ओम शांति। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हमारे आदरणीय तुलसी भाई जी हैं। बाबा के घर में ऐसे बहुत सारे अनमोल रत्न हैं जिन जो स्टेज पे नहीं होते हैं लेकिन बाबा के दिल में होते हैं। तो तुलसी भाई जी एक ऐसे ही अनमोल रत्न हैं आज हमारे साथ। तो हम सब एक हाथ हिलाकर भाई साहब का स्वागत करेंगे। आपने देखा होगा जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो भाई साहब फ्रंट रो में होते हैं। देखा है, जो पुराने लोग होंगे वो जानते हैं भाई साहब ऑडियो वीडियो जो है मधुबन में जो शुरुआत की ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग की तो वो हमारे आदरणीय तुलसी भाई जी हैं। लौकिक में भाई साहब बहुत ही अल्प आयु में 21 साल की उम्र में बाबा का आपको ज्ञान मिला और ज्ञान भी मिला ब्रह्मा बाबा की नगरी से, जहाँ ब्रह्मा बाबा का टेम्पल है अजमेर, वहाँ से। तो अल्प आयु में आपको ज्ञान मिला, आपकी पढ़ाई वहाँ हुई, आप एज ए इलेक्ट्रिशियन आपने डिग्री ली और शुरू से ही आपका धारणा मुहूर्त इतने थे, ज्ञान मुहूर्त इतने थे कि आपकी विशेषताओं को देखकर जो सेंटर इंचार्ज थे उस समय पे हमारे आदरणीय पालू दादी थे, तो उन्होंने दादी ने आपको देखा और बोला आप सेंटर पे रहो, सेंटर निवासी आपको बनाया आपकी भावना को देख के, आपकी सेवाओं को देख के। और फिर जब 81 में मनमोहिनी दीदी जब थे तो भाई साहब को मधुबन बुला लिया, पांडव भवन उस समय था। तो उस समय पर कोई भी जो मधुबन निवासी थे एक डिपार्टमेंट नहीं होता था उनका, विशेषकर छोटा परिवार था तो एक व्यक्ति 3 जगह 4 जगह 5 जगह ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सेवा करते थे। तो भाई साहब किचन में भी सेवा करते थे, दूध डिपार्टमेंट में भी सेवा करते थे, ऑडियो वीडियो का भी उस समय पे सारा देखते थे। और फिर फाइनली जब ओम शांति भवन बना, अव्यक्त बाप दादा लोग ज़्यादा आने लगे तो भाई साहब फिर उस समय पे ऑडियो वीडियो इन्होंने सारी सेवाएं शुरू की व्यवस्थित रूप से। और भाई साहब पहली इन्होंने जो रिकॉर्डिंग का सिस्टम था, क्योंकि विदेशी आते थे उनको बाबा को सुनना है उनको देखना है, क्योंकि वो तो बार बार मधुबन नहीं आ सकते हैं ना, साल में आ सकते हैं 2 साल में आ सकते हैं। तो जो रिकॉर्डिंग का कॉन्सेप्ट था वो हमारे आदरणीय तुलसी भाई जी ने स्टार्ट किया और इनकी हमेशा से जो इंटरेस्ट था लोगों को सब जो बाबा बोल रहा है उसकी अनुभूति हो, सब लोग उसको सुन सकें। तो जब ये अव्यक्त बाप दादा से मिले तो अव्यक्त बाप दादा ने इन्हें सुखदेव का टाइटल दिया, सुखदेव तो ऐसे भाई साहब के लिए हम ऐसा आपका स्वागत है, आज हमें आपका सानिध्य मिला है और हम चिट चैट करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा और हमारे जो भट्टी में भाई बहने आए हैं वो भी आपसे पूछेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे नज़दीक अव्यक्त बाप दादा को आपने देखा है, जितनी बार भी बाबा इस संगम युग पर ओम शांति भवन में आया है आपने देखा है, आप दृष्टि लिए हैं माइक दिए हैं, आपको कैसे अनुभूति हुई कि वो भगवान है और आपके पर्सनल ऐसे कौन कौन सी मीटिंग है जो आज जिनसे आपके पुरुषार्थ में जिनसे आपके जीवन में आपको बहुत निश्चय बढ़ा हो, ताकत मिली हुई हो, तो ऐसे कौन से व्यक्तिगत अनुभव हैं जो आज आप हमारे साथ शेयर करेंगे।
ओम शांति। जैसे भाई ने बताया कि अजमेर में ज्ञान मिला और जब मैं कोर्स कर रहा था तो जो बहन कोर्स करा रही थी उसमें जो ओरा दिख रहा था मुझे, तो उस ओरा ने मुझे बहुत आकर्षण किया। मुझे लगा कि आध्यात्मिक शक्ति है तो यहाँ है, ज्ञान तो आत्मा के बारे में और लोग भी बोलते हैं लेकिन जब वो आत्मा का कोर्स करा रही हैं उसी समय ही उनके जैसे वृत्ति का वाइब्रेशंस पहुंच रहा था, तो और पहले दिन से ही एक तरह से निश्चय हो गया कि ये जो संस्था है वो महान हैं, क्योंकि जैसे भाई ने बताया कि मैं इलेक्ट्रिशियन रहा, तो इलेक्ट्रिशियन जहाँ भी जाता है वहाँ सारा दिन काम करता है या कुछ घरेलू भी हो जाता है, तो वहाँ का माहौल उसको समझ में आ जाता है काफ़ी कुछ। तो यहाँ जब मैं आया तो मुझे और संस्थाओं में मैं जहाँ कोई ना कोई कारोबार से या वैसे भावना से भी गया, तो उसके बनस्पत मुझे बहुत अलग लगा, और जो प्यूरिटी का जैसे मैंने बताया ओरा महसूस हुआ, जिसने बहुत आकर्षित किया। और ये ओरा का जो विषय है ये मेरा अपना जैसे एक हॉबी बन गया है औरों की ओरा देखने का। तो जब वो मेडिटेशन हॉल था हमारा, हिस्ट्री हॉल था, उस समय जब मैं माइक्रोफोन देता था तो जो संदेश ही ट्रांस में जाते हैं तो कुछ से संदेश ही तो ना झटका देते हैं ना, बोल जाते हैं ट्रांस में, तो उनकी बॉडी से हिलने से पता चलता है आपको कि वो ट्रांस में गए हैं या आए हैं वापस। लेकिन कुछ ट्रांस मैसेंजर ऐसे होते हैं जो साइलेंटली जाते हैं, उनकी बॉडी से आपको पता नहीं चलता है कि वो ट्रांस में गई या वापस आ गई। जैसे हमारे चंडीगढ़ के बहन जी थे, अचल दीदी, ऐसे और भी कई हैं। तो उस समय मुझे वो ओरा वाला कॉन्सेप्ट हेल्प करता था, क्योंकि मेडिटेशन हॉल में जैसे इतनी बड़ी लाइटें नहीं होती थी, नॉर्मल लाइट में आप जब आप बैठते हैं आप आपस में भी एक दूसरे को देखेंगे तो आपको वो महसूस होगा हर एक के जो ओरा है। जो ट्रांस में जब बैठती हैं बहने योग में, तो उसका ओरा जो होता है जब ट्रांस में चली जाती हैं तो ओरा थोड़ा लो हो जाता है। और यही चीज़ अवेक बाप दादा के साथ भी जुड़ी हुई है। जब गुलजार दादी बैठते थे उनका जो अपना ओरा होता था, और गुलजार दादी जब ट्रांस में चले जाते थे तो वो ओरा कम हो जाता था। जैसे ही बाबा का आना होता था तो ओरा आप समझ सकते हैं फुल हो जाता था, बहुत अधिक मात्रा में हो जाता था वो ओरा, वो लाइट। तो आजकल तो क्या है, हमारे पास कैमरास हैं, उसमें हम देख लेते हैं दृष्टि से आंखें खुली या कैसा, उससे भी पता चल जाता है। और आजकल फिर हम आदि हो गए हैं जब हमारे सामने मॉनिटर होता है तो आँखों को देख के, लेकिन उस समय वो चीज़ नहीं थी। मेडिटेशन हॉल में या हिस्ट्री हॉल में जो हमारा बैठक था वो साइड में था, बाबा का फेस सामने होता है, तो साइड से भी हमें ओरा वो महसूसता होती थी, और ओरा के हिसाब से ही मैं महसूस कर लेता था कि बाबा आ गए हैं या गुलजार दादी ट्रांस में चले गए हैं। ये जो ट्रांस में जाने का और आने का वो ओरा से काफ़ी कुछ मुझे मदद मिलता था। जहाँ तक कि गुलजार दादी जी की बात है, जैसे अपन कहते हैं बहुतों से आपने सुना होगा कि मम्मा भी कुमारी आई थी, लेकिन जब से मम्मा को मम्मा बोलना शुरू हुआ स्लोली उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी ऐसा हो गया कि जो जैसे लगे कि माँ हैं या बड़ी उम्र वाली हैं। ऐसे पहले ऐसा नहीं होता था कि बाबा, जैसे बाद में लास्ट में आप लोगों ने देखा कि दादी गुलजार और अब एक बाप दादा के फेस में बहुत माइनर ही अंतर आता था, लेकिन शुरू में ये अंतर बहुत होता था। गुलजार दादी का जो अपनी लाइफ स्टाइल था, जो अपनी दादी के रूप में जब हम गुलजार दादी को देखते थे और जब हम अव्यक्त बाप दादा को देखते थे, तो अगर आप फोटो देखेंगे उस समय के तो आपको बहुत अंतर दिखेगा, जो अंतर स्लोली स्लोली कम होता गया। क्योंकि हालांकि बाबा की पदरामणि उन दिनों ज़्यादा घंटे होते थे, लेकिन धीरे धीरे जो दादी का अपना पुरुषार्थ है और जो उनको ये महसूस होता है कि उनको जब हम देखते हैं तो हम उनसे बाप दादा की अपेक्षा करते हैं कि जैसे बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं, और कई विदेशियों में ऐसे प्रोग्राम भी रखे गए जिससे उनको वो भाषणा देनी थी कि बाप दादा आए हैं, तो वो स्ट्रक्चर भी उनकी आँखें विशेष रूप से फेस को आप देखेंगे तो नैन बोल हाथ या इशारों हाथों का इशारा या जो बॉडी लैंग्वेज है हिलना डुलना वो सब भी बहुत बहुत अंतर आ गया। जब हम गुलजार दादी को फर्स्ट टाइम मान लो मैं 77 में देखा और उसके बाद मैं लास्ट में 17 में देखा, तो कितना अंतर आया होगा उनकी बॉडी में। और बॉडी में अंतर था वैसे तो एज के अनुसार होता है, लेकिन यह अंतर था बाप समान बनने का, वो जो महसूस था मुझे हमेशा ही। तो मैं बता रहा था ओरा का महत्व, तो ये ओरा केवल मुझे ही नहीं बहुतों को अनुभव होता है। तो एक दिन थोड़े दिन पहले जो संडे की मूली थी, लास्ट संडे की, कल नहीं हो उसके पहले, जो बाबा ने महारथियों की दो प्रकार बताए, तो एक तो सेवाओं के महारथी, थोड़ा अवस्था का डिफरेंट करके बाबा ने बहुत रॉयल रूप से डिफरेंस बताया। तो उसमें उसका अनुभव मैं ये कहूँगा कि बहुत भाई बहने जो आगे बैठते हैं चाहे महारथी होते हैं, एक बार दादी जानकी ने शेयर किया हम लोगों के थोड़े छोटे ग्रुप में कि बाबा कल आए थे और एक बहन पहले होके नाराज होके गई कि मुझे फर्स्ट रो में मिलना चाहिए था चांस मुझे, लेकिन सेकंड रो में थर्ड रो में मिला। तो वो थर्ड रो में स्थान मिलने के कारण अपसेट थी। और एक आई वो मिडिल, वो अपने शांतिवन के मिडिल हॉल में बैठे थे और उन्होंने आगे सुनाया कि बाबा ने मुझे पूरा दृष्टि देके पूरा भरपूर किया। तो डिफरेंस यहाँ ये है कि आप जब देखते हैं तो किस भाव से देखते हैं और क्या ग्रहण करना चाहते हैं, या आप सीट का ही चक्कर में बैठे हैं, तो वो चीज़ का बहुत महत्व है हमारे आध्यात्मिक जीवन में कि हम किस दृष्टिकोण से बाबा के पास आते हैं, किस दृष्टिकोण से हम लिखते हैं या महसूस करते हैं कुछ, और बाबा के बोल को हम किस रूप में लेते हैं, वो बहुत मायने रखता है। तो आध्यात्मिकता माना हमारी इनर स्थिति है ना, तो इनर स्थिति को बनाने के लिए भी जो पुरुषार्थ है वो भी इनर रीति से होना चाहिए, न कि हम यहाँ बैठे हैं या वहाँ बैठे हैं। हम लोग यहाँ मधुबन में बैठे हैं लेकिन आप अपने घर गृहस्थ में बैठे हैं, लेकिन कभी कभी हम लोगों को महसूस होता है कि मधुबन निवासियों से भी ज़्यादा परिवार में रहने वाले आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी भावनाओं को हम देखते हैं, उनके चाल चलन को देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उनके बोलचाल को देखते हैं। तो हमको लगता है कि बहुत सारे भाई बहने भले परिवार में रहते हैं लेकिन हम मधुबन निवासियों से आगे हैं। कभी कभी मैं हंसी में बोलता हूँ कि फॉरेनर्स जब आते हैं तो वो बोलते हैं आप तो मधुबन निवासी हैं, सारा टाइम यहाँ रहते हैं। तो मैं उनको बोलता था कि यहाँ देखिए माउंट में बहुत सारे मकान हैं, जो उनमें हमेशा रहते हैं वो एक्चुअली वो सर्वेंट होते हैं, वो मकान को संभाल के रखते हैं ताकि मालिक जब आएगा तो उसको अच्छी तरह यूज़ कर सके। तो हार्डली 1 मंथ आते हैं फॉरेनर्स माउंट में, या जिनके मकान हैं वो माउंट में 1 मंथ आते हैं, इन तो जो रहने वाले हैं जो संभालने वाले वो 12 मंथ ही संभालते हैं, तो रहते वो ही हैं। लेकिन इसी प्रकार हम जब मधुबन में रहते हैं तो बाबा ने एक्चुअली हमको मधुबन निवासी क्यों बनाया, ताकि हम आपके लिए एक में ग्राउंड तैयार करके रखें, आपके लिए वाइब्रेशन बना के रखते हैं ताकि आप जब आएं तो आपको सुख महसूस हो। नहीं जब आप सिक्योरिटी में हैं तो स्पेशली मैं जहाँ तक समझता हूँ, एक होते हैं बॉर्डर मिलिट्री, एक होता है CRPF। तो जो बॉर्डर पे होते हैं उनके बैकबोन CRPF या और जो होते हैं वो, उनको वहाँ पूरा रसद मिलना चाहिए, उनकी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, उनके लिए बैकग्राउंड में होते हैं। बॉर्डर पर लड़ने वाले अलग होते हैं, है ना। इसी प्रकार वास्तव में बॉर्डर पर लड़ने वाले आप हैं, माया आपके सामने आती है, लोग आपको देख के अपना जीवन बनाते हैं, आपको आप एक्चुअली जो हमारी संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हम तो बैकबोन हैं, आपको क्या कमी पड़ती है उसको कवर करने के लिए हम यहाँ पुरुषार्थ करते हैं या एक तरह से डिपार्टमेंट चलाते हैं, मैनेज करते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा यही है कि आप जो हैं बॉर्डर पे हैं, आप परिवार में हैं, आप दुनिया के सामने सैंपल हैं, तो आपका जीवन में कोई पुरुषार्थ में कमी ना आए या आपका जीवन औरों के लिए एग्जाम बना रहे, वो हम लोग यहाँ महसूस करें, मदद करें। इसी प्रकार बाबा के जो महावाक्य हैं उसको भी मैं यही शुरू चाहता था कि अनेकों तक पहुँचे। तो उस समय ऐसा सिस्टम पहले था नहीं, और अगर कोशिश करते थे तो भी ना एक वॉकमैन रखते थे फॉरेनर्स बाबा के सामने ताकि थोड़ा आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, और उसी से ही वो काम चलाते थे। लेकिन स्लोली स्लोली टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई और बाबा के यज्ञ में भी उस चीज़ की इम्पोर्टेंस महसूस की गई। तो मुझे याद है दादी प्रकाश मणि जी थे, तो एक बार अमेरिका गए और अमेरिका में शहर तो दूर दूर होते हैं, तो एक युगल उनको अपनी कार में एक शहर से दूसरे शहर लेके जा रहे थे। तो तब तक हमारे पास ऑफिशियल क्लासेस का कॉपी का सिस्टम नहीं था, और लेकिन कोई आता था तो हम कोशिश करते थे कि उनको संतुष्ट करें, तो इंटरनल कनेक्शन करके रिकॉर्ड करके कैसे भी करके। तो एक तो वो युगल जो है मेरे से 8-10 कैसेट लेके गया था दादी के क्लासेस के या जानकी दादी के या मुरली की दादी के आवाज़ में मुरली का, तो उन्होंने प्ले किया जब तक कार में दादी के साथ सफ़र करा रहे थे। तो बहन ने बोला कि जब से ये क्लासेस हम लेके आते हैं तुलसी भाई से, तब से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन क्या आया है कि ट्रैफिक में हम जब फंस जाते हैं तो मूड ऑफ हो जाता था, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, बीच में ट्रैफिक आ गए तो मूड ऑफ हो जाता था। तो घर में उसी मूड ऑफ से आते थे भाई, तो घर में भी वो वैसा ही वातावरण बनाते थे। लेकिन जब से ये कैसेट सुनते हैं तो जैसे ट्रैफिक आया तो ध्यान इधर कैसेट सुनने में लगा दिया, तो जब घर में आते हैं तो वो ज्ञान की बातें रिवाइज करते हैं। तो जो पहले मूड ऑफ करके आते थे और ऑफिस का भी एक तो तनाव, एक ट्रैफिक का तनाव, वो आके घर में बरसते थे, और जब से आए ये कैसेट लेके आए हैं तो ये दादी ने समझा उस चीज़ का इम्पोर्टेंस। तो दादी ने आके बताया कि तुलसी मैं तो तुमको मना करती थी ये सब करने के लिए, लेकिन मैंने देखा उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। तो उसके बाद एक ऐसा घटना घटी कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप चल नहीं पाएंगे, आपको इधर व्हील चेयर पे ही बैठना होगा या क्रेचेस लेके चलना होगा।
आप भाई साहब एक्सीडेंट हुआ था ना
जी,
ओम शांति भवन से
जी
भाई तो गिर गए थे
कुछ। ओम शांति भवन में सीलिंग्स में का सेवा कर मानो स्पीकर टेस्टिंग करते करते नीचे आ गए, जैसे इतना है ना, तो नीचे आएंगे तो क्या होगा, फ्रैक्चर होगा। तो डॉक्टर ने बोला कि आप नॉर्मल नहीं चल पाएंगे। तो लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि क्या करूँगा फिर, मैं क्या डिसेबल हो गया। तो मन में आया कि मैं जो बहुत भाई बहन कैसेट क्लासेस मांगते हैं तो मैं शांति से एक जगह बैठ के कॉपी करके देता रहूँगा। तो इतने में ये संकल्प आया और 2-3 दिन में ही एक व्यक्ति बॉम्बे से आया गोलक भाई के पास, उन दिनों गोलक भाई जो आजकल अकाउंट संभालते हैं वो कैसेट सेल किया करते थे, तो उनके पास आया कि ये मशीन मैंने खरीदी लेकिन मेरे काम की नहीं है, मैं चाहता हूँ कि भले आप कम पैसा दे के अपने पास इसको यूज़ कीजिए। तो वो मेरे पास जहाँ मेरे बेड पे था वहाँ मशीन लेके आए गोलक भाई। तो मुझे आया 2 दिन पहले तो मुझे संकल्प आया और आज ये मशीन सामने आ गई। तो मैं गोलक भाई को बोला कि ये मशीन का जितना भी वो पैसा मांगते हैं उनको लॉस नहीं पड़ना चाहिए, जितने में भी उन्होंने खरीदी है वो उतना पैसा आप दे देना, क्योंकि ये एक ईश्वरीय योजना लग रही मुझे। तो तब से मानो क्लासेस की कॉपीज का सिस्टम शुरू हुआ। मैं लंबा नहीं करूँगा इसको, लेकिन वो जो औरों को बाबा की मुरली मानो बाबा आते थे और अगले दिन उनको मुरली मिलना शुरू हो गया तो बहुत खुश होते थे। और पहले क्या होता था, बाबा जब मुरली चलाते थे तो सब लोग लिखते थे, तो जिनको कैसेट मिलना पॉसिबल हो गया तो लिखने में बुद्धि कम लगा के बाबा से ग्रस्त करने में, बाबा से दृष्टि लेने में एक्स्ट्रा पावर या एक्स्ट्रा बुद्धि लगा सके, तो उनको बहुत खुशी हुई। स्लोली ये माहौल चला और बाबा ने जब उसके बाद में बाबा से मिला तो बाबा ने कहा कि ईश्वरीय महावाक्यों को औरों तक पहुंचाना ये सबसे बड़ा सुख देना है, तो तुम सुख दे हो औरों को सुख दे रहे हो। तो केवल वही नहीं, अगली बार जब मधुबन निवासी मिले तो बाबा ने बोला अच्छा सुखदेव आ गया। तो मुझे लगा कि बाबा को याद है लास्ट टाइम उन्होंने सुखदेव बोला था, और अगले उसके नेक्स्ट टर्न में भी मधुबन निवासी मिले तो मुझे जो हमारे साथ में बैठे थे, पापा तो आपको वही बोलने वाले सुखदेव, आप तो आप बैठ जाओ हम मिल के आते हैं। तो और सच में ऐसा हुआ, बाबा ने बोला अच्छा सुखदेव है ना तुम, तो सुखों के लहरों में लहराते हुए सुखों की अनुभूति करने और कराने वाले सुखदेव आत्मा हूँ। तो तीन बार इस प्रकार से बाबा ने रिवाइज कराया सुख देने का, और मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस बाबा को है, जिस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमारे देवी परिवार को है, उसको हमें कंटिन्यू करना ही चाहिए, और ज़्यादा खुशी से हमने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। तो बाबा की महावाक्य औरों तक मिलने लगे, और दादी प्रकाशमणि के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो दादी प्रकाशमणि निमित्त थे हमारे डिपार्टमेंट के बड़े वैसे भी, तो हम जो भी कुछ करते थे उनके इशारों से या उनको उनकी अनुभव से या उनके शिक्षा से या उनके क्या बोलेंगे आदेश से करते थे। तो उनों का बहुत सहयोग रहा, उनकी भावनाएं हमारे प्रति बहुत ऊंची रही और परिवार के प्रति भी ऊंची रही, उसको तो आप जानते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा। तो अब एक पद्धति तक आगे मैं कर रहा हूँ कि बाबा ने एक बार ऐसे बोला कि बाबा जैसे बोला है तो बाप के बच्चे भी बोले हैं, लेकिन जैसे बाप भोले के साथ बहला है ऐसे बच्चे को भी थोड़ा सा होशियार बनना है। तब तक मुझे समझ में नहीं आया, एक्चुअली एक दो दिन मैं उस चीज़ की भी मंथन ही करता रहा कि मैं किस रूप में भोला हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। तो और वो जो महावाक्य थे वो पर्सनल महावाक्य थे, बिना माइक्रोफोन के हर मधुबनी वासी पापा के सामने आ रहे थे, और 20 फीट तक कोई भी पास में नहीं था जो और सुन सकें। तो हर एक को बाबा ने पर्सनल टच दिया, वो पर्सनल डायरेक्शन कहो या शिक्षाएं दी, और वो किसी के साथ शेयर करने वाली थी नहीं। तो मन में ही सोचता रहा कि, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कहीं हमें कोई यूज़ न कर रहा हो। कई बार क्या होता है कि कोई आपको कुछ सेवा दे रहा है या कुछ काम बता रहा है, तो ब्लाइंडली हम लोग करते हैं कि कोई बड़े भाई ने कहा है तो करना ही है। तो कहीं ना कहीं हम यूज़ हो रहे हैं या कोई हमें यूज़ तो नहीं कर रहा, इस चीज़ का ध्यान हमें देना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो और सच में ऐसा हुआ कि उसके बाद तो उस चीज़ के लिए थोड़ा बाबा ने एक वरदान दे दिया होशियारी का, या तो ख्याल रखने का अपना, ब्लाइंडली कुछ नहीं करने का ऐसा। तो और बाबा ने एक बार मुझे कहा कि बच्चे में मोल्ड पावर है, मोल्ड पावर, यही मोल्ड पावर के आधार पर रियल गोल्ड बन के विश्व में प्रत्यक्ष होंगे। तो उस समय विश्व में प्रत्यक्षता की जब शब्द किया आया तो मुझे लगा कि दादियां ही सर्वोपरि हैं, लेकिन स्लोली स्लोली महसूस हुआ कि इंटरनेशनल फैमिली ने भी हमें बहुत कुछ प्यार दिया है, और प्यार का आधार ऑफ कोर्स बाबा का दिया हुआ डिपार्टमेंट या बाबा के दिए हुए महावाक्यों के शेयर करना है। लेकिन बहुत महसूस हुआ, जैसे मैंने ये बताया कि जब ओम शांति भवन से गिर गया था तो भी पूरे विश्व के भाई बहनों ने मुझे मदद की, और कहीं योग पट्टी रखा, कुछ भाई बहने आते थे जब मधुबन तो कोई उसमें एक्यूप्रेशर जानता था तो वो बोलते थे कि तुलसी भाई अभी तो आप लेटे हुए हैं, आपको पता नहीं चलता है, जब आप चलना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाँव जो नसें हैं, पाँव हैं जो सूज गया है, या तो पाँव में जो नसें हैं वो सूज गए हैं। तो इसलिए वो आके एक्यूप्रेशर करते थे, कोई कुछ करता कोई कुछ करता। व्हाट आई मीन कि परिवार का प्यार, ईश्वरीय परिवार का प्यार बहुत महसूस हुआ, जिससे ये महसूस हुआ कि हम लॉर्ड बाय इंटरनेशनल फैमिली, जो हम लोग स्कूल लाइफ में शाउट करते थे ना, हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। लेकिन उस समय तो इतना महसूस तो नहीं होता, लेकिन बाबा का बनने के बाद आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे ईश्वरीय परिवार में, चाहे बाहर वाले भी, सबके प्रति हमारा प्यार रहता है, और सबने हमें प्यार दिया भी है, और यही विश्व बंधुत्व का एक निशानी है। अगेन मैं वापस बाबा के पास बातों में आता हूँ कि बहुतों की जब बाबा से मुलाकात हम देखते थे तो हमको उनसे बहुत प्रेरणा मिलती थी। जैसे किसी बहन को, टीचर बहन को बाबा ने वो कहा कि जहाँ भी जाते हो, क्योंकि ट्रांसफ़र होता है, तो जहाँ भी जाते हो तो पहले वहाँ के अनुसार अपने आप को डालो, थोड़ा उनके दिल जीतो, बाद में अपनी बात रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको वो रिस्पेक्ट से सुनेंगे भी। और आपको अगर आप जाते ही अपनी विशेषताएं, भले आप में विशेषताएं हैं, इन जाते ही अपनी चलाना शुरू करोगे तो वो आपको सहयोग नहीं देंगे। जिस भी सेंटर पे जाओ तो वहाँ के अनुसार पहले अपने आप को डालो, उनको उनका दिल जीतो, बाद में अपनी बात रखो। मैं इसलिए भी सुना रहा हूँ आपको कि कई बार आप ट्रांसफ़र होते हैं और एक देश आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो कई बार आप में एबिलिटीज़ बहुत होती हैं, लेकिन वहाँ जो स्टाफ होता है, जो चेंज होती है, उस स्टाफ को आपकी विशेषताओं के बारे में मालूम नहीं होता है। और आप जब चाहते हैं या जाते हैं, आप के ऊपर हावी होना चाहते हैं, या तो बॉस बनते हैं, या तो अपने विशेषताओं को यूज़ करना चाहते हैं, तो शायद आपको सफलता नहीं मिलती हो। तो अगर आप ये युक्ति अपनाते हैं तो शायद आपको भी वो सफलता मिलती हो, मिल सकेगी। ऐसे ही एक बहन विदेश से आती थी, हर साल आते थे, तो हमको तो लगता था बाबा की पुरानी बच्ची है और हर साल बाबा के मिलने आती हैं। एक बार बाबा ने उनका कहा कि बाप दादा जानते हैं कि माया आपको डिस्टर्ब करती है, बाबा से हाथ छोड़ने की कोशिश भी आप करते हो, लेकिन तुम बाबा को हाथ छोड़ना चाहो तो भी बाबा आपको नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगा कि मानो बाबा उस बच्ची को इतना प्यार दे रहे हैं और बाबा ये कह रहे हैं कि बाबा तुम बाबा को छोड़ना चाहो तो भी बाबा आपको नहीं छोड़ेंगे। तो बाद में मैं उस बहन को थोड़ा सा पर्सनली मिला, उनसे बातचीत किया लाइट रूप में, तो उन्होंने बात कहा, तुलसी भाई आप तो यहाँ मधुबन में रहते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है, लेकिन हम वेस्ट में जाते हैं और जहाँ हम जॉब करते हैं तो उन वहाँ वातावरण बहुत अलग है, तो यहाँ तो हम इतना एनर्जी बढ़ के जाते हैं तो एक दो मास तक तो वो एनर्जी रहती है, लेकिन स्लोली स्लोली उनके साथ दुनियावी लोगों के साथ संबंध बनाते बनाते हम उनके आकर्षण में आ जाते हैं और उनके जैसे बन जाते हैं। तो कभी कभी आता है कि अब हम बाबा से मिलने के लायक नहीं रहे तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन जैसे जैसे बाबा से मिलने के टाइम सीजन शुरू होती है तब फिर से हमको बाबा की खींच होती है और हम जिनसे संबंध थोड़ा बहुत बनाया उनको भी कट ऑफ कर देते हैं, तो ऐसा लगता है हमने उनको धोखा दिया, लेकिन बाबा की आकर्षण बहुत होती है तो हम मानो वो चीज़ में उस समय जो है स्टेबल नहीं रह पाते हैं, और एक तरफ लगता है हमने उनको धोखा दिया, एक तरफ आता है कि हम नहीं, हम बाबा को धोखा नहीं दे सकते। तो ऐसा उस बहन ने अनुभव सुनाया, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ उस माया पे भी वो विजय प्राप्त कर पाए और बाबा की ब्लेसिंग उनको। तो हम लोगों के अनेक जन्मों के संस्कार हैं, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है, लेकिन बाबा हम बच्चों को पावर भी बढ़ता है और हम हाथ छुड़ाना चाहें तो अभी बाबा नहीं छोड़ना, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार सुनाते ना कि बच्चा अंगुली पकड़ता है तो वो छुड़ा के जा भी सकता है, लेकिन पिता बच्चे की अंगुली पकड़ता है तो छुड़ा के जा नहीं पाता है ना। तो हम चेक करें कि हमने बाबा का अंगुली पकड़ा है या बाबा ने हमारी अंगुली पकड़ा है। तो कई बार आपको महसूस होगा कि बाबा ने ही हमें अपना बनाया, बाबा ही हमें पालना दे रहे हैं। कल संडे की मुरली में भी था ना कि बाबा ही जगाते हैं, बाबा ही आपको खिलाते हैं, बाबा ही लोरी दे के सुलाते हैं। तो वो चीज़ को हम महसूस करेंगे कि हमें बाबा हमें कहाँ कहाँ मजबूर कर रहे हैं। कई बार आपको लगता होगा कि हम सोच कुछ और रहे थे लेकिन हम गए कहीं और वहीं सफलता मिली, तो कई बार बाबा ही हमें रास्ता या और रास्ते बंद कर देता है, आप बाउंड हो जाते हैं ये रास्ते पे चलने के लिए। कई बार इतने गेट तो बहुत हैं लेकिन एक ही गेट खुला हो तो आपको उसी से ही जाना पड़ेगा, जहाँ से आप जाना का सोच रहे थे वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन फिर एक रास्ता दिखता है जहाँ से हम जाते हैं तो वहीं सफलता मिलती है। तो उस समय महसूस होता है कि बाबा करण करावन हार हमें कहाँ लेके जाना चाहते हैं ना। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे यहाँ भी कई भाई बहन आते हैं तो एक डिपार्टमेंट में सेट होते हैं, कोशिश करते नहीं हो सेट हो पाते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट तीसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर ऐसी जगह सेट हो जाते हैं वहाँ उनको लगता है उनके लिए ही आए थे वो, लेकिन तब तक जब तक वहाँ वो सेट हो, थोड़ा सा ऐसा लगता है हिल रहे हैं, लेकिन बाबा उनको वहाँ सेट करना चाहते हैं। मुझे याद है एक बार दादी प्रकाशमणि जी से हमने पूछा था, मैंने कि दादी ये बहन फलानी बहन जो आई है, तीन चार जगह तो आपने भेजा है उनको, तो ये कहीं भी सेट नहीं हुई, तो आपको बुरा नहीं लगता कि ये आपने भेजा और वहाँ वो सेट नहीं हो पाई? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं बुरा लगता। क्यों? क्योंकि जहाँ उसके भगत हैं, जहाँ उसके अनुयायी हैं, वो उसको खींच रहे हैं दूसरी जगह, अपनी जगह, तो और जगह वो सेट हो नहीं पाएगी। वो कोशिश भी करे, लेकिन वो पुल जो है जिज्ञासुओं का या भक्तों का, वो उसको वहाँ सेट होने नहीं देगा। और जहाँ उसको सेट होना है, वहाँ जाते ही उसको जैसे लगेगा मैं अपने घर में आ गई हूँ, या यहाँ ये मेरी धरनी है। और वहाँ जो और भाई बहन हैं, वो उनको ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि जैसे जो चाहते थे वो उनको वही मिल गया। तो मैंने देखा दादी जी की पालना, दादी जी का धैर्य, दादी जी का विश्वास बच्चों में, ट्रस्ट, केवल बाबा में ट्रस्ट नहीं, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं उनमें भी इतना ट्रस्ट कि वो दादी कभी डिस्टर्ब नहीं हुए कि उन्होंने इनको ये सेवा दी। तो बाबा के यज्ञ दादियों का उन्हें संभाला, वो चीज़ को मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ हमें बाबा ले जाना चाहता है, तो अव्यक्त पालना का यही मीनिंग है। कई चीज़ें अदृश्य है ना, अव्यक्त माना क्या, अदृश्य। तो अदृश्य शक्ति हमें क्या करने के लिए प्रेरणा दे रही है या खींच रही है, उस चीज़ को भी हम महसूस करना अभी अभी का समय है। कई भाई बहने कहते हैं ना कि अब तो बाप दादा आते ही नहीं हैं, तो बाप दादा की पालना कैसे महसूस हो? तो चार दिन पहले भी पुराने भाई बहन पूछ रहे थे कि साकार बाबा आए, फिर अब एक बाप दादा आते थे, तो हमको लगता था मधुबन में भी हम उसके लिए जाएं, अब हम किस लिए आए? तो मैं कहा कि वास्तव में जो अव्यक्त शब्द है, अव्यक्त शब्द का ही है अदृश्य ना, तो अदृश्य पालना तो अभी भी मिल रही है। आप सब यहाँ मधुबन में आए तो आपको महसूस होता है कि मधुबन में आए, या कि नहीं ऐसा लगता है कि पहले बहुत अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है, अच्छा लग रहा है ना? तो एक्चुअली अव्यक्त पालना तो पूर्णतः अव्यक्त पालना तो अभी शुरू हुई है, केवल मधुबन ही नहीं लेकिन जीवन भर में। हम मधुबन निवासियों को भी महसूस होता है कि पहले जो सहारे थे नहीं, जैसे वैसाखियों के सहारे चलना और अपने आप में चलना, उसमें जो अंतर होता है, वो चीज़ को अपन महसूस अभी कर रहे हैं कि बाबा जो कराना चाहता है वो टचिंग और कैचिंग पावर हम यूज़ करके, बाबा के इशारों को समझ के हम अपने को दिशा निर्देश देते हैं उस टचिंग कैचिंग के आधार पे। तो हमें महसूस होता है कि अव्यक्त बाप दादा अभी भी हैं और अव्यक्त बाप दादा अभी भी पालना दे रहे हैं।
बाबा तो लास्ट में सारी वैसाखियाँ जी छोड़ के एक बल एक भरोसा।
ऑफ कोर्स तो यही एक्चुअली हमारा लक्ष्य है कि अब हम उन चीज़ों को महसूस करना शुरू करें। नो कहीं कोई बोले तो आप करो, और किसी के इशारों को आप समझो, दोनों में अंतर होता है ना। जिनके साथ प्यार होता है तो हम उनके इशारों को समझ जाते हैं। आपके साथ तो कई बार हेल्पर होता है तो आप वो समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए, तो उस अनुसार वो आपको हेल्प करता है तो आपको खुशी होती है। और अगर आप बोलें फिर वो करके आए तो उसका तो अलग चीज़ है भैया, कहने से किया, लेकिन वो आपको, आप जो चाहते हैं वो करना शुरू कर दे तो आपको लगता है वो आपको समझ पाया है ना। इसे ही हम अब बाबा के इशारों को समझना शुरू करें, उसको प्रैक्टिकल में लाना शुरू करें, तो और उसको उसकी सफलता को देखें, तो आपको महसूस होगा कि बाबा करा रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आपको हमने बहुत शांत स्वरूप देखा है, हर परिस्थिति में अब बैलेंस रहते हैं। तो क्वेश्चन यही आता है कि जब हम लौकिक में होते हैं, कार्य व्यवहार में होते हैं, ड्यूटीज पे होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट लोग होते हैं, तो उस समय पे जैसे हम एक चित शांत चित कैसे रह सकते हैं? और जो बाबा अवस्थाओं की बात करते हैं ना, आज मुरली में भी था कि आपको मीठा बनना है, राइट, मुरली चिंतन नहीं हुआ तो वैसा बताएंगे, मीठा बनना है। तो ये जो बैलेंस है उसको हम कैसे अपनी स्थिति बना के रख सकते हैं, क्या पुरुषार्थ?
आप लौकिक में हैं, आप महसूस करते होंगे कि जब आप संपन्न है, संपन्न है, तृप्त है, आपका मूड अच्छा है, तो छोटा बच्चा आपको कान पकड़ता है, मूछ पकड़ता है, कुछ तंग करता है, वो अपने खेल रहा होता है, आप अपना काम भी कर रहे होते हैं, तो आपको उसका खेल अच्छा लगता है जब आपका मूड अच्छा है। कभी कभी आपको वही बच्चा, उसको तो मालूम नहीं आपका मूड आज अच्छा नहीं है, तो वो आपको तंग करता है, आप उसको, जैसे जब आपका मूड अच्छा नहीं तो उसी वही बच्चे को तो मालूम नहीं है, वो अपने तरीके से वैसे ही आपको आपके साथ खेलना चाहता है, लेकिन आप उसको थोड़ा हटाने की कोशिश करते हैं, या आपका या चिड़चिड़े स्वभाव से बोलते हैं। तो ये जो बात है कि हम मीठे हैं या नहीं है, मिठास हमारे व्यवहार में है या नहीं है, उसका आधार है हमारा अपना मूड, और हमारे मूड का आधार है हमारी संपन्नता। जब हम अपने आप में भरपूर हैं, हमारे जो हमें चाहिए वो मिल रहा है या सब मिल गया है, तो हमारा मूड अच्छा रहता है। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि जब हम बाबा के बने, शुरू शुरू में तो बहुत हमारा मूड अच्छा रहता था, कुछ भी हो हम सहन भी कर लेते थे, सुन भी लेते थे, तो भी एंजॉय करते थे, कोई हमें चिढ़ाता था तो भी हम एंजॉय करते थे। क्यों? क्योंकि हमें वो प्राप्ति की नशा था, प्राप्ति की अनुभूति हमारे आँखों में थी। जैसे आज मान लो मैं अपने आप में क्या ध्यान रखता हूँ, एक सिंपल गीत है, हमने देखा हमने पाया शिव बोला भगवान, पहले हमारे यहाँ हर थर्सडे को बजता था, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या ये सच्चे है। मैं आपको भी ये कहूँगा कि ये लाइन जो है अपने आप से पूछने का, बीच बीच में हमने देखा हमने पाया शिव बोला भगवान, क्या ये सच्चे है, ये हमारे दिल की आवाज़ है या मात्र गीत है। दूसरा एक गीत है, तुम्हें पा के हमने जहाँ पा लिया है, तो मैं अपने आप से पूछता हूँ क्या ये सच है, क्या ये मेरे दिल का आवाज़ है, क्या मैंने ये पाया है ना। कई बार आप इस एक लाइन को आप घंटों आप अपने ऊपर चिंतन कर सकते हैं। तीसरा है, कई बार वो भी मूल्य में ही आता है, कि नई उम्र की कलियाँ तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, घर घर को स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी। तो जब मैंने बाबा को पाया, बाबा से सब कुछ पाया, फिर बाबा ने मुझे काम बताया हर आंगन को फुलवारी बनाना है, तो पहला तो ये भगवान को पाया माना, उससे ऊंची तो कोई चीज़ है नहीं। बाबा को पाया माना मैं अपने आप में तृप्त होना चाहिए, मुझे वो सुख भासना चाहिए, सुख अनुभव होना चाहिए जो बाबा को प्राप्त करते समय मैंने शुरू में किया, उसको मैंने मुझे कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि उस समय बाबा मुझे मिला अभी नहीं मिला है, बाबा तो और किसी के साथ अपन रहते तो प्यार और बढ़ता जाता है ना। कई बार क्या कहते हैं कि भाई हम रहते तो पड़ोसी, लेकिन साथ रहते रहते आपस में हमारा मोह जैसा हो गया, अपनापन इतना हो गया, तो बाबा के साथ हम इतना सालों से रहे तो हमारा अपनापन और ज़्यादा बढ़ गया, तो बाबा को हम और ज़्यादा महसूस करना चाहिए, न कि बाबा से कमी महसूस होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि विशेष रूप से हम ब्राह्मण परिवार में, बाहर में तो आपको अंतर महसूस होता है कि ये अज्ञानी है तो मानो लोअर है, लो है, सब फील होता है। लेकिन जब मैं अपने आप से पूछ रहा था कि मुझे फरिश्ता बनना है तो क्या करना होगा, तो अंदर से जवाब आया कि जैसे मैंने बाबा का बना तो लौकिक और अलौकिक में डिफरेंस महसूस हुआ, या अलौकिक की तरफ खिंचाव हुआ, अलौकिक परिवार की तरफ खिंचाव हुआ, और लौकिक परिवार थोड़ा सा रिश्ते हैं, नाता है, लेकिन वो जो खिंचाव, जो अपनापन कम होता गया धीरे धीरे, और अलौकिक परिवार की तरफ मेरा खिंचाव बढ़ता गया। सिमिलरली जब मुझे फरिश्ता बनना है तो इससे भी मुझे पार जाना है, ब्राह्मण परिवार से भी मुझे पार जाना है। तो जैसे मैंने उस समय ये रखा कि मुझे नाता निभाना है पिता से, मुझे नाता निभाना है भाई भाई बहनों से, लेकिन मुझे बुद्धि इधर लगानी है, मानो उनके निभाने के मात्र ही हमें मुझे उनसे कनेक्शन रखना है, लेकिन उनके साथ लगाव झुकाव में नहीं आना है। और धीरे धीरे क्या हुआ कि हम ब्राह्मण परिवार भी आपस में साथ साथ रहते हैं, मधुबनी निवासी साथ में रहते हैं, आप सब आते हैं, आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है, तो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि स्लोली स्लोली हमारा लगाव ब्राह्मण परिवार में भी होता है, तो वो क्या कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, या उसको हम शिक्षा दें या हम उसको रोकें, या तो हम भी उनके जैसे बने या हमें भी उनके जैसा बनना है। जैसे जो चीज हम लौकिक में करते थे आपस में, वही चीज हमने यहाँ दूसरे दूसरे रूप में करना शुरू किया। अगर तो अब मुझे आया कि अगर मुझे फरिश्ता बनना है, तो जैसे मैंने लौकिक से अलौकिक रूप में चेंज किया, मैंने शूद्र से ब्राह्मण बनने में चेंज किया, ऐसे ही मुझे ब्राह्मण से फरिश्ता बनने में चेंज करना है। और मुझे जैसे उस समय रहा कि मुझे ये लक्ष्य अपनाना है, तो मुझे लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, ऐसे फरिश्ता बनने का भी मुझे लक्ष्य रखे, मुझे फरिश्ता बनने की तरफ ज्यादा झुकाव रहना है, देना है, ब्राह्मणों से जैसे नाता निभाना है, ऐसा फरिश्ता बनना है अगर तो मुझे आवश्यकता है। तो ऐसे जब हम लौकिक में जीवन जीते हैं, तो जहाँ जहाँ हमारे लगाव हैं, वो जो पुल है, या तो जहाँ से हम कंपटीशन कर रहे हैं उनसे कंपटीशन न करके हम अपनी तृप्ति में रहेंगे, भरपूरता में रहेंगे, तो उनकी जैसे बातें हैं वो बहुत छोटी लगने लगेगी, और हम उस चीज़ को सहज ही उनको एक तरह से रहम खा के प्यार देंगे और मिठास से बात करेंगे। अदरवाइज हमें महसूस मालूम है कि हम जितने ऊंचे हैं या बाबा ने यहाँ जो हमें बनाया है वो ये बेचारे नहीं बन पाए हैं। तो जहाँ रहम है, जहाँ ये महसूसता है कि छोटे हैं मुझे उनको देना है, जहाँ ये महसूसता है कि मैं पूर्वज हूँ, ये और नीचे की आत्माएं या मैं उनके लिए निमित्त हूँ एक तरह से पूर्वज रूप में, तो पूर्वज जब अपन श्राद्ध वगैरह रखते हैं तो क्या चाहते हैं कि पूर्वज हमें ब्लेस करें। पूर्वज ये थोड़ी चाहते हैं कि अगर बच्चा बले ना, उस समय नहीं भी माना होगा जब आपका बच्चा था, लेकिन जब आप अंतिम स्थिति में होते हैं या दोबारा अगर उस बच्चे को मिलेंगे दो जन्म बाद, तो आप क्या चाहेंगे, उसको ब्लेस ही करेंगे ना। तो जहां आपको ये महसूसता है कि आप पूर्वज हैं, तो आप उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, तो सहानुभूति जहाँ है, प्यार जहाँ है, रहम जहाँ है, तो आवाज में भी ऑटोमेटिकली माधुर्य होता ही है। और यही चीज हमने यहाँ महसूस किए हैं कि जो हमने पाया वो आज के बाबा के बच्चे इतना नहीं पाए हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें उनके प्रति उनके नटखटपन को ज़्यादा न देख करके हम उनके प्रति प्यार की भावना रख पाते हैं। और मैं समझता हूँ यही आपको लौकिक में भी महसूस करेंगे तो आपको अच्छे अनुभव होंगे।
थैंक यू सर। आपने पूर्वज की बात किया ना, तो मेरे को एक प्रसंग याद आ रहा है। जब हम 2 साल पहले यूरोप गए थे, स्पेन में थे, गाबा जी अशोक भाई जी मेरे साथ थे, तो जो वहाँ के जिल भाई, वो 2 भाई हैं, वो हमें घुमाने के लिए लेके गए मैड्रिड में। तो वहाँ पे उनके जो पैलेस था और मिनिस्टर थे, उनके सारे मकान वगैरह बने हुए थे, बाहर गार्डन था। तो उसने वहाँ पे बोला, भाई साहब आप यहाँ बैठिए, क्योंकि यहाँ पे हमें योग करना है, वाइब्रेशंस देने हैं। उसने बोला, हम सब जानते हैं कि हम पूर्वज आत्मा है और हमारे वाइब्रेशंस जरूर इनको टच होंगे ना। तो आपने ये जो बोला ना, जो फीलिंग होती है वो बहुत बड़ी सेवा करती है। और उनका वो, उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो ब्राह्मण फैमिली कोई भी जाता है मधुबन से, वो ऐसे करवाते हैं वहाँ पे बैठ के सबको योग देना, यू नो। तो ये पूर्वज वाली जो फीलिंग होती है, सच में हमारे हमें अंदर से परिवर्तन लाती है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा कि पहले मेरी योगल ज्ञान में आई, है ना, मैं बाद में आया, लेकिन जब मैं ज्ञान में नहीं था उससे पहले मैं उनको बहुत बुरा भला बोलता था, विरोध करता था, और कई बार तो हाथ भी उठा देते हैं, ऐसा भी होता है। और फिर जब ज्ञान में आ गए तो फिर वो गिल्ट होती है, यू नो, ये तो फैमिली की गिल्ट हो गई। लेकिन जीवन में कई बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ज्ञान में आने के बाद छोटे छोटे गिल्ट होते हैं, यू नो, अंदर में ऐसा कॉन्शियस में कुछ न कुछ छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये जो भाव होता है, इससे हम अपनी स्थिति को,
एक छोटी सी बात पता था, अभी मुझे तुरंत याद आया, लौकिक में हम भाई बहन बचपन में लड़ते हैं, जैसे आपस में छोटे भाई बहन लड़ते हैं। तो मुझे याद है कि मैं अपनी बहन का नोटबुक फाड़ दिया, तो ऑफ कोर्स बाद में मुझे गिल्ट फील हुआ कि मैंने उनका नोटबुक फाड़ दिया, उनका पूरा 6 महीने का जो पढ़ाई का नोट्स थे वो खराब हो गए, उनको तो फिर से लिखना पड़ा वो। तो मैं मम्मी, खुद बचपन होता है, ईगो होता है, बचपन का अपना ईगो होता है, तो मैं मम्मी को बोला आपने हमें छुड़ाया क्यों नहीं, हम लड़ रहे थे। तो अभी फीलिंग मुझे अंदर आ रही है, तो मम्मी समझ गए, उन्होंने कहा कि देखो मैंने बच्चे इसलिए पैदा नहीं करे कि चुप करके बैठ से रहे, मैंने इसलिए बच्चे पैदा किए कि मेरे आंगन में रिमझिम लगे,
थोड़ा झगड़ा करें।
तो आप कभी खेलते हो, कभी झगड़ा करते हो, मुझे दोनों में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं क्यों छुड़ा है तुमको, अगर महसूस हो रहा है तो जाके बहन को डिक्टेट कर और उनको लिखने में मदद कर, क्योंकि फिर से बना रही है नोटबुक, तो उसको जाके मदद कर। वो सच में वो मैंने किया। तो मेरा भाव ये है कि कई बार हम जब अज्ञानता में होते हैं या तो अपने उस अलग मूड में होते हैं या उस समय की एनर्जी में ऐसे होते हैं कि हम कहीं कुछ कर बैठते हैं ज्ञान में आने के पहले या ज्ञान में आने के बाद भी कभी कभी, जो हमें बुरा लगता है बाद में अपने ऊपर होता है। तो बाबा तो हमें सब माफ कर देता है, और बाबा ने ये भी कहा है कि हम अपने को भी माफ करें। तो हम बाबा को, बाबा के साथ योग करके, बाबा या कुछ एक घंटा स्पेशल दिन उसके लिए रखें कि आज का दिन है ना, तो मैं इस चीज़ पे महसूस, अपनी महसूसता बढ़ाऊंगा जो मैंने गलत किया है, और उस चीज़ को मैं हमेशा के लिए अपने मन से भी निकालूंगा। तो बाबा को दे दें हम अपने वो दिल की आवाज़ या जो फीलिंग है हमारी, वो हम बाबा को दे दें, और बाबा ये महसूस करें कि बाबा ने माफ़ कर दिया, और जिस आत्मा के साथ मैंने किया उसने भी मुझे माफ़ किया, उस आत्मा से भी हम सूक्ष्म रूप में माफ़ी मांग लें, अगर सामने हैं तो हम वैसे स्थूल रूप में भी माफ़ मांगें तो अच्छा है। और फिर जब उनके मन से भी कई बार निकल जाता है, हमारे मन में फिर थोड़ा सा है, तो हम उसको अपने मन से भी निकाल दें, और उस बहन को या भाई को जैसे आपने युगल बताया, तो उसको थोड़ा एक्स्ट्रा मदद करें ताकि अब वो भी आगे बढ़े और हम भी आगे बढ़ें, दोनों मिलके फास्ट गति को चलें, ताकि हम वो जो पीछे जो करते आए वो पीछे रह जाए, छूट जाए। तो अपने को भी माफ़ करें, उस आत्मा से भी माफ़ी मांगें, और बाबा को वो अर्पण कर दें, और ये समझ लें कि वो पूरा हो गया।
थैंक यू सर। कुछ धारणाओं के विषय में भी लोगों ने पूछा, जैसे बाहर होते हैं यू नो, पार्टीज में जाना पड़ता है, दोस्तों का पीयर प्रेशर होता है, तो कभी कभी वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जाने अनजाने में भी हो जाता है, तो मन में हमेशा जैसे डिटर्मिनेशन रहे, और उस समय पे बाबा ने क्या क्या बोला है यू नो, कैसे हम इन चीजों को
देखिए, जब हम जिस दिन से हमने बाबा को पाया, और मुझे तो याद है हमें बहनों ने कभी ये मर्यादाएं बताई नहीं, लेकिन मुरली में आते आते हमने सीखी और हमने उसको प्रैक्टिकल में लाना शुरू कर दिया। अब आता है कि कई बार आप ऐसी सिचुएशन में हैं, डिफरेंट सिचुएशन में हैं। मुझे याद है कि हम लोग पहले बाहर से ब्रेड नहीं लेते थे, तो 81 में दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ लाल किले पे, वहाँ इतने सारे सेवाधारियों के लिए भोजन बनाना, रोटियाँ बनाना सहज नहीं था। तो उस समय ये सोचा गया कि इसका क्या तरीका अपनाया जाए, तो मॉडर्न या कुछ ऐसे ब्रेड आते थे उस समय, उस चीज़ का स्टॉक लिया गया, और जो वहाँ सेवाधारी थे उनको वो ब्रेड अवेलेबल कराया गया, और दूध अवेलेबल कराया गया, ताकि हम दूध और ब्रेड खा के अपना सेवाओं को कंटिन्यू कर सकें। तो एक है कि हमारी अपनी धारणाएं जो बाबा ने कही हैं, उसमें एक है कि हमारा अपना जो वृत्ति है, क्या चल रहा था
धारणा के विषय में,
धारणाओं की बात, तो कई बार हमारा वृत्ति अपना अगर दृढ़ता है कि मुझे ये धारणाएं बना के रखनी है, तो एक तो हमारी दृढ़ता में मदद करती है, जहाँ हम रहते हैं वो दृढ़ता जो औरों के लिए भी एक तरह से एक तरीका बन जाता है, एक एग्जाम्पल बन जाता है, वो लोग भी हमें मदद करते हैं। अधिकतर ऐसा होता है। और आजकल तो क्या है कि मैंने देखा बहुत सारे बहाने होते हैं, जैसे भोजन की अगर बात करें तो वेजिटेरियनिज्म को तो सभी अपनाना शुरू किए हैं और सब जगह उसकी इम्पोर्टेंस होती है। आजकल तो वीगन टाइप पता नहीं क्या बोलते हैं,
वीगन भी,
तो वो भी बहुत अवेयरनेस उसकी बहुत है, बहुत देशों में और इंडिया में भी कई जगह है, मैंने सुनता हूँ लोगों को बहुत खान पान के विषय में, धारणाओं की बात में तो बहुतों को ये अवेयरनेस है। इवन किसी भी क्षेत्र में चले जाओ तो ये कहा जाता है कि भाई भी जो अंकुरित भोजन है या जो फलाहार है उसको महत्व तो सभी देते हैं। तो अगर हम किसी को समझाते हैं प्यार से या हम अपनी दृढ़ता रखते हैं तो लगभग हमें मदद मिल जाती है। और उस मदद को लेने की कोशिश करें। अगर कई बार हम क्या होता है कि हम अपनी बात रखते नहीं हैं, समझो मैं बीके बना, हो सकता है मेरा बॉस भी बीके ही हो अंदर से, लेकिन वो भी चुप रहता है, मैं भी चुप रहता हूँ और पता नहीं चलता है कि हम दोनों एक ही ट्रैक पर चलना चाहते हैं, लेकिन न मैं उससे मांगता हूँ न वो देता है या न वो आगे होके ऑफर करता है, क्योंकि मैं चुप रहता हूँ। मैं ये भी नहीं शो करना चाहता हूँ कि मैं बाबा का बनना हूँ, लेकिन अभी वो माहौल नहीं है। मुझे याद है जब अशोक गाबा जी यहाँ रहना शुरू किया तो चुपके से रहना शुरू किया। उस समय एयरफोर्स में ये कानून था कि कोई संस्था में आप नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी वो आए और रहे स्लोली। आज के समय में तो ऐसा नहीं है कि आज आप हमारे
प्रोटोकॉल होते हैं
कई जगह आप जहां सेवाएं करते हैं, बल्कि उनसे से उनको बाबा का बना के या उनके यहां अपने बाबा के प्रोग्राम भी रखवाते भी हैं या करने जाते भी हैं तो आपको मदद मिलती है। लेकिन स्वयं का दृढ़ता बहुत मायने रखता है किसी भी धारणा में। जैसे माताओं को बंधन आता है तो कई बार हम ये महसूस हुआ, जैसे आपने गिल्ट की बात कही, अगर उस माता की अगर वो उस समय एक दृढ़ संकल्प नहीं होता तो शायद वो हार जाती, वो अपने पति को ज्ञान में नहीं लेके आ पाती, लेकिन बाद में वो पति भी ज्ञान में आया जैसे आपने बताया। तो ऐसे ही हमारी दृढ़ता हमें बहुत मदद करती है। और दूसरा बाबा का आह्वान, कोई भी जगह जहाँ हम पहुँच नहीं पाते हैं, डिसेबल हैं, तो बाबा का आह्वान करें, हम उसकी उनकी मदद को अनुभव करें। बाकी तो क्या है ना, जैसे कहते हैं गुरु नानक जी पालकी में लेके जा रहे थे उनको दो जने, और कई ऐसा पास होना पड़ा जहां उनको खान पान का जो नियम है वो तोड़ना पड़ा। तो गुरु नानक से उन्होंने पूछा पालकी में से कैसा सिचुएशन है, अगर हम बोलते हैं कि हम ऐसा तो हम प्रत्यक्ष हो जाएगा कि हम हिंदू हैं। तो जहाँ तक मैंने जो कहानी सुनी है तो उनको कहा गया कि ये कृपाण उसमें से पास करेंगे भोजन में से, तो वो भोजन जो जैसे एक तरह से प्रसाद बन जाएगा। तो इस प्रकार की विधियां हैं कि हम बाबा जब कहते हैं कि कई जगह आपको अगर कुछ खाना भी पड़ता है तो एक्स्ट्रा बाबा की याद में बैठ के उसको दृष्टि दे के वो खाएंगे तो उसका फर्क पड़ता है। ऐसे और चीज़ों की धारणाओं में भी हैं। जहाँ तक कि पहले आपने मिठास की बात कही तो दादी जी को हम देखते थे, कई बार हमें कोई कोई ऐसी गलती होती थी तो दादी हमें शिक्षाएं भी देती थी, लेकिन वो मन में नहीं रखती थी। तो शिक्षा देते समय उनका जो स्वरूप होता था वो शक्ति स्वरूप होता था। तो कभी भी ऐसा होता था, समझो मुझे दादी कुछ ऐसा स्ट्रिक्टली शिक्षा देना चाहती है, तो जब मैं दादी जब मुझे बुलाते थे उनके ऑफिस में तो दादी जी का एक मिनट लगता था उनको, क्योंकि उनका नेचुरल रूप नहीं था ना वो, तो उनको एक मिनट लगता था वो शक्ति स्वरूप धारण करने में। तो मैं महसूस कर पाता था कि दादी जो अभी बोलेंगी वो थोड़ा
टाइट होगा,
हाँ थोड़ा सा हार्ड होगा या मेरे लिए। तो वो दादी ने बोला तो उसके बाद दादी नॉर्मल बाद में हो जाती थी। हम जब बाहर निकलते थे तो किसी को ये नहीं हो सकता था कि दादी ने इतना तुलसी को बोला होगा, तुलसी के चेहरे से ऐसा लगे कि दादी की डांट खा के आया हो, ऐसा कहीं नहीं लगा। तो जब हम कहीं ऐसी जगह हैं, समझो आप ऑफिसर हैं या कोई सेवा में आप बॉस हैं और जो हैं आपके सहयोगी हैं वो इतना नहीं मानते, तो हमारे शब्द जो होंगे वो थोड़ा सा हार्ड होंगे, लेकिन हमारी भावनाएं अच्छी होंगी और वो उस समय कार्य करेंगी। मैं थोड़े दिन पहले कहीं बात कर रहा था तो मुझे चंद्रमणि दादी जी की याद आए, तो चंद्रमणि दादी जी ने कभी गुस्सा नहीं किया, लेकिन उनके जो बोल थे वो सुन के ही आपको धारणा करने पे तुरंत जैसे मजबूर हो जाएं ऐसा होता था। तो कई बार हमारी भावनाएं ऊंची हों लेकिन जब हम किसी को शिक्षा देते हैं तो उस शक्ति का, जिस प्रकार की शिक्षा देते हैं उस शक्ति का आह्वान करके हम शिक्षा देते हैं तो उनको प्रभाव पड़ता है, जैसे संतुष्टता के ऊपर या तो सरलता के ऊपर। इस प्रकार के जैसे दुनिया में भी हम लोग शक्तियों की उपासना करते हैं ना अलग अलग गुण के लिए, तो इस प्रकार की शक्तियां बाबा से हम महसूस करके फिर हम उनको उस बात को रखेंगे सामने तो उनको लगता है वो, तो उसकी धारणा भी उनको सहज होती है।
थैंक यू सर। अभी दादी डे हमारे नज़दीक है, दादी की बहुत सारी बातें, कल भी राजू भाई जी आए थे उनके साथ भी हुई, फिर भी भाई साहब जैसे कल भी क्वेश्चन पूछा था, दादी को सब माँ भी समझते हैं और वो इतनी अच्छी प्रशासिका भी थे, हर मधुबन निवासी जो पुराने हैं वो इतने कनेक्टेड हैं, मतलब जैसे बाबा वैसे दादी, तो ऐसी कुछ बातें जो जिनसे हम कुछ सीख सकें दादी के साथ आपके जो अनुभव।
जैसे आप सबको मालूम है, जैसे आपने कहा कि राजू भाई से आपने सुना है तो उन्होंने जरूर बताया होगा कि दादी जी को हम सब भी बाबा की सीट पे देखते थे और दादी जी स्वयं भी ये एक तरह से निमित्त भाव रखते थे कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है तो बाबा की सीट पे मुझे देखा जाता है, ये उनको अंदर में भी रहता था। और बाबा भी मैं कहूँगा कि वो साथ में उनके कार्य करते थे, जब बाबा ने उनके सिर पे ताज रखा है उस चीज़ का, जिम्मेवारी का, तो बाबा वो चीज़ को साथ निभाते भी हैं। जैसे कई बार कहते हैं ना कि बाबा जब आपको कार्य करने के लिए करते हैं तो कहीं आपकी गलती होने वाली भी होती है तो बाबा बीच में आ जाते हैं और वो आपके चेंज कर देते हैं उस बात को। तो इसी प्रकार ये चीज़ें हमने बाबा के बातें हैं हमने दादी जी के जीवन में भी महसूस की। एक तो बाबा को जब दादी बुलाते थे, इवन साकार में भी, इवन गुजर दादी को बोलते थे कि बाबा को बोलो अभी आना ही है, तो सच में बाबा को आना होता था, बाबा ने जैसे एक प्रॉमिस किया हुआ था। तो ये चीज़ स्थूल की थी लेकिन सूक्ष्म में भी, जैसे मैंने पहले बताया कि दादी शक्तियों का आह्वान करती थी तो बाबा उनमें वो शक्ति एडमिनिस्ट्रेशन की भर देते थे। तो अभी तक तो मैंने इतना बताया कि दादी जब शक्ति रूप धारण करती थी लेकिन माँ का रूप उनका नेचुरल था ही। मुझे याद है फर्स्ट टाइम हम जब एक सेंटर से, मैं सेंटर पे रहता था तो सेंटर बहुत छोटा था, वहाँ दो मिनट ही या एक डेढ़ मिनट ही गाड़ी रुकती थी, लेकिन हम लोग दूध लेके गए इस बहाने में, मुझे लगा कि जो नए भाई हैं उनको दादी से मिलाते हैं, तो जस्ट सिंपल थर्मस में दूध लेके गए। और दादी को तो ये नहीं था कि यहाँ कोई आने का, किशनगढ़ एक छोटी सी स्टेशन है अजमेर से, तो दादी जी वॉशरूम में गए और इतने में हम दिख गए मोहिनी बहन को और मोहिनी बहन ने ठक ठक किया, तुरंत दादी बाहर आ गए वापस और दादी ने हमको प्यार दिया, मोहिनी बहन ने तुरंत ही वो थर्मस मेरे से लिया और ट्रॉली का बॉक्स निकाला, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ गाड़ी रुकती नहीं है, और दादी ने बस मोहिनी बहन ने ट्रॉली हाथ में पकड़ाई और ट्रॉली हाथ में लेते लेते ही गाड़ी चलना शुरू हुआ।
ट्रेन में
हम मिलने आए दादी को, वहाँ किशनगढ़ है छोटा सा स्टेशन है, वहाँ ज्यादा गाड़ी रुकती नहीं है, तो वहाँ उस समय भी उस एक मिनट में जो भाई आए थे साथ में मेरे, उन सबको लगा कि जैसे माँ का प्यार महसूस हुआ। तो ये तो नए भाई बहन थे, लेकिन हम मधुबन में भी कोई भी मान लो, मैं कई बार अहमदाबाद से आया हूँ कुछ खरीदारी करने गया, अहमदाबाद से आया और रात को 10:30-11 पहुँचा हूँ, तो मुझे लगता है अभी दादी को क्या डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन अगर सवेरे मुझे अमृत वेले दादी ने देख लिया तो दादी को आया ये तुलसी कब आया मुझे तो पता ही नहीं। तो उसके बाद मैंने ये महसूस किया कि दादी जी को इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है, तो मैं 10:30 भी आता, मैं दादी के रूम में जाता, दादी का रूम भले बंद होता लेकिन कई बार उनको आवाज़ आता है अंदर से कि दादी सोए नहीं है, तो मुन्नी बहनों कई बार उनके साथ बात करे और या मालिश करे या कुछ काम करे, तो मैं दादी को डिस्टर्ब न करने का सोच के बोलता था, मुन्नी बहन दादी को बोलना तुलसी भाई आ गया। तो क्योंकि दादी को ये रहता था कि जो बाहर गया है वो व्यक्ति घर में अगर आ जाए तो जैसे माँ को संतोष होता है कि आ गए। ऐसे ही तो दो चार दिन पहले विद्या बहन अनुभव सुना रहे थे कि आबू रोड से निकले हम लोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना रास्ते में कुछ आ गया तो लेट हो गए, तो दादी आंगन में इंतजार कर रहे थे 11 बजे रात को कि आए ही नहीं बच्चियाँ। तो जैसे हम कार से उतरे तो दादी ने गले लगाया और कहा कि मुठी तुमने तो मेरा श्वास ही ऊपर कर दिया। मैं ना दादी को इसका कंसर्न फील हुआ। और मुझे याद है कि जब अगेन मैं जो गिर गया था एक्सीडेंट के बाद, उस समय दादी जी अहमदाबाद में मिलने के लिए आए तो मुझे तो बैठने का अलाउट नहीं था, हालांकि पता चला दादी आने वाले, लेकिन बैठने का अलाउट नहीं था, लेटने का ही था उस समय। तो दादी जी ने झुक के, लेटे हुए इंसान को कैसे गले लगाएंगे, तो दादी जी ने झुक के गले लगाया और वो फीलिंग दी। न केवल मुझे वो फीलिंग दी लेकिन जो आसपास स्टाफ था वहाँ का, उन सबको भी लगता था माँ हो तो ऐसी है ना। तो ये चीज़ का हमने बहुत बार अनुभव किया, बहुत बार अनुभव किया माँ की महसूसता का। तब और जैसे माँ को ये आता है कि ये सीजन आया है तो ये उनको खाने को देना चाहिए, माँ मानो जैसे पालना का बारिश पड़ी है तो अरे बोली बारिश पड़ी है इसमें हलवा खाने का मजा अपना है या पकोड़े खाने का मजा अलग है। तो दादी ओम शांति वन में मूली चलाते जलाते बोलती, अगर आज हलवा मिले तो गर्म गर्म तो कितना अच्छा लगेगा। और भोली दादी हमारे वहाँ सुन रहे होते, उस समय से हलवा बनना तैयार होता और दादी थोड़ा मूली स्लो करती क्योंकि दादी को कन्फर्म था कि हलवा बन रहा होगा, और हलवा बन के कटोरियों सहित ओम शांति भवन में हमको मिल रहा। तो ऐसे ही मानो हम आंगन में खड़े हैं और बारिश आई है, अरे बारिश आई इसमें तो पकौड़े खाने का मजा है। तो आप देखेंगे हिस्ट्री हॉल के बाहर तो एक दो बेंच हैं, पैसेज हैं, तो वहाँ उसमें टीन शेड था, हालांकि अभी तो थोड़ा पक्का बना दिया है, तो वहाँ ही स्टोव मंगवा के, नहीं नहीं हम किचन में नहीं आएंगे खाने के लिए, वो ऑफिशियल लगता है, हमको यहाँ चाहिए पकौड़ा, पिकनिक करेंगे हम, बारिश देखते देखते खाएंगे, और वहाँ पकौड़े बनते हैं और हम लोग खाते। कई बार ऐसे पीस पार्क गए हैं घूमने के लिए, अरे चलो हम यहाँ पीस पार्क, मुझे याद है एक बार कुमार यहाँ आए हुए थे उनको घुमाने के लिए पीस पार्क गए या तो कहीं से तो हम जा रहे थे, अचानक दादी ने बोला नहीं हम सिरोही चलते हैं। तो सिरोही यहाँ से काफ़ी दूर है और सिरोही बस को घुमाया गया। और मुझे याद है कि कई बार हम लोग बाहर जाते तो पिकनिक के हिसाब से गीत बजाते थे, तो ये गीत बज रहा था जब प्यार किया तो डरना क्या, तो उस समय वो गीत हिट होता था। तो दादी ने बोला तुलसी माइक दो, तो मुझे लगा पता नहीं शायद दादी को ये गीत अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं दुनिया में गीत बजा दिया। तो दादी ने बोला कुमारियों से, अच्छा किस किस को डर लगता है प्यार का, बाबा से प्यार किया तो डर, कौन कौन डरते हैं हाथ उठाओ। किसी ने भी हाथ नहीं उठाया। तो दादी ने उस पर बताया कि बाबा से प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है, भगवान से प्यार किया है, छुपके भी क्यों करें हम। तो ऐसे दादी ने, तो वो ऐसा मानो हर एक को, चाहे कुमार हो, चाहे माताएं बहनें हो, चाहे परिवार में रहने वाले सभी को माँ की फीलिंग हम उनसे आए, न केवल हम ब्राह्मणों को, लेकिन जब भी दादी जैसे आम का सीजन आता तो जैसे हमें आम मिलते, भले समझो हमको चार आम मिले हैं तो दो आम हमारे वर्कर्स को भी, जो हमारे वहाँ पांडवन वर्क करते थे उन वर्कर्स को भी मिलते। अगर दादी जी हमें दिवाली की कुछ गिफ्ट दे रही है तो आने वाले सीजन ठंडी की है, तो आज भी उस चीज़ को दादी जी के बाद भी जारी रखा गया, ठंडी आने से पहले हमारे यहाँ वर्कर्स को कंबल सौगात में दिए जाते हैं ताकि ठंडी को वो झेल सकें। ऐसे ही दिवाली पे कुछ न कुछ मिठाइयाँ बनती, तो दादी जैसे हम ब्राह्मणों को खिलाती, हम निवासियों को खिलाती, ऐसे जो आसपास के डॉक्टर्स हैं जिनके पास हम लोग, कभी ग्लोबल तो बाद में बना, उससे पहले तो ग्लोबल नहीं था, तो हम लोग पालनपुर अहमदाबाद कुछ डॉक्टर्स के पास जाते जो हमारे कनेक्शन के थे, और वो सच में हमको देख के बहुत प्यार से फ्री भी इलाज करते थे और खुश भी होते थे हम लोगों को मिलके। तो उन तक ये चीज पहुंचे, ये मिठाई पहुंचे, या ये आम पहुंचे, या ये सीजन का फल पहुंचे, ये दादी का प्रयास होता था। तो मोस्टली जब गिरफ्त का सीजन होता था, मोस्टली जब आम का सीजन होता था, या दिवाली के सेलिब्रेशन होते थे, या दादी जब हमें कपड़े दे रहे होते थे हर साल में, हम निवासियों को पूरे साल के लिए इकट्ठा मिलता है, चार जोड़ी छह जोड़ी जितना भी हमारे आवश्यकता के अनुसार, तो जैसे हमको मिलता है तो बड़े कुछ अंदाज में हमारे यहाँ वर्कर्स को भी दादी देते। उस कारण से क्या होता था कि हमारे वर्कर्स थे उनका दादी के प्रति ही नहीं केवल, लेकिन पूरे यज्ञ के प्रति जो भावनाएं थी ऊंची रही, जिस कारण से हमारे कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे, आप यहाँ बैठे हैं, आपके रूम्स खुले हुए होंगे ना, कोई लाक आप चाबी तो आप लगा के नहीं आए, सफाई के लिए खुले छोड़ के आए होंगे। तो कभी भी हमारे पास कोई शायद साल में एक बार या दो साल में एक बार कभी ऐसा सुनने को मिलता हो कि भाई इसका ये चीज चोरी हुआ, नहीं, लेकिन हम लोग निश्चिंत होके रहते हैं हमारे यहाँ कोई चोरी नहीं होता है कोई, क्योंकि हमारा वो उसका कारण है कि दादी ने वो भावनाएं वो माँ की पालना उन वर्कर्स को भी दी। और जब मुझे याद है कि जब दादी मुरली सुनाने जाते थे तो दादी जी का मुरली और चश्मा मैं लेके जाता था साथ में, और दादी को माइक्रोफोन के साथ साथ मुरली और चश्मा वहाँ क्लास में देता था ताकि रास्ते में दादी जी चल सके। तो मैं कई बार साथ में चलता तो दादी जो वर्कर्स हो उनको भी वेव उतना ही करती, उतना ही प्यार वेव करने प्यार से वेव करती और उनको पूछती ठीक हो ठीक हो। तो उस कारण से क्या होता कि जो वर्कर्स के पास भी कभी कोई बहू आती तो दादी से मिलाने के लिए लेके आती उनको, भाई दादी का आशीर्वाद चाहिए ना, या कोई बच्चा पैदा होता तो दादी से मिलाने के, दादी से आशीर्वाद लेने के लिए आते। और दादी के पास भी हमारे मुन्नी बहन उस समय बहुत ख्याल रखते थे, उनके पास सब प्रकार की सौगातें रहती थी, मान लो वर्कर्स हैं तो उनको ऐसी साड़ी देनी चाहिए कि ऐसा देना चाहिए, मुन्नी बहन भी साथ में वो तुरंत ही लेके आती और उनको वो सौगात भी मिलती, जैसे एक तरह से गुरु के घर से कुछ मिला है और उसको उतना ही प्यार से वो संभाल के यूज करते हैं। इस प्रकार माँ की पालना, और जैसे मैंने पहले बताया दादी ने किसी को रिजेक्ट नहीं किया, कोई सा भी बच्चा बाबा का कैसा भी सेवाओं में सफल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन कोई भी बच्चे को बाबा दादी ने रिजेक्ट नहीं किया। अच्छा यहाँ नहीं सेट हुआ वहाँ सेट होगा, यहाँ नहीं हुआ वहाँ होगा। तो प्यार दादी का ये महसूस कराता है कि माँ ही है जिस बच्चे को जन्म दिया, थोड़े रिजेक्ट करेगी है ना, कोई और रिजेक्ट कर भी दिया डिवोर्स भी कर दे, लेकिन माँ बच्चों को रिजेक्ट नहीं करेगी। तो इस प्रकार का माँ का प्यार हमेशा महसूस हुआ।
थैंक यू सर, थैंक यू। बस एक मिनट और, दादी की बात हुई, जब मैं आया था मधुबन में तो बहुत छोटा था 16 साल का, और टेलीफोन एक्सचेंज में सेवा करता था। उस समय पे ये 1/4 1/2 rate वो कॉन्सेप्ट था STD का। तो भाई साहब आपको पता होगा कि दादी रात को डिनर के बाद बाबा का कमरा और ऐसे पीछे से चक्कर मारते हुए टेलीफोन एक्सचेंज के सामने से गुजरते थे। तो दादी कभी भी देखते थे ना तो वहाँ खड़े होके एक मिनट दृष्टि देते थे, और उनका वो एक जैसे होता है ना कॉपीराइट जैसा, जैसे उनकी दृष्टि देना और यू नो करना। तो ये दादी की बहुत सारी ऐसी यादें हैं।
अभी दो दिन पहले चंद्रशेखर भाई हैं पांडेपन अकोमोडेशन का संभालते हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 बजे रात को उनको दादी ने बुलाकर कहा कि वहाँ तो फर्स्ट फ्लोर पे बहुत ठंडी होती है तो तुम जाओ अभी अभी कनात लगा के आओ, और कनात लगा के मुझे बताना, बाद में दादी सोएगी। और सच में ही वो लोग कनात, उनके पास कोई रेडी तो नहीं थी, लेकिन जिस भाई के पास कनात होती हैं उनसे उनको उठाया, फिर जाके कनात लगाई, ताकि क्योंकि आजकल तो फिर भी वो एल्युमिनियम की शीशे की खिड़कियां लगा दी हैं तो हवा सीधा रूम में नहीं जाती, लेकिन उन दिनों वो सब नहीं था। तो भाइयों को दादी ने भेजा कनात लगाओ, और किसी के पास कंबल नहीं हो या ओढ़ने का कम हो तो उनको पूछ के उनको देख के आओ, फिर दादी को बताना। और सच में काफ़ी टाइम हो गया, 12 बज गए तब तक, तो दादी को 12 बजे वो बताने गए कि दादी हमने कनात लगा दी है, उसके बाद दादी जो है।
थैंक यू माँ की, थैंक यू। एक्चुअली सुनाने को बहुत है पर टाइम अभी पूरा हो गया है।